ये आकाशवाणी है। सामिकी में प्रस्तुत है सातवें चरण के चुनाव के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुब्रत मुखर्जी और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
छह चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। लगभग 484 सीट्स का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सिर्फ आखिरी चरण बचा है चुनाव का, जो कि मई 19 यानी कि रविवार को होना है। सबसे पहले हम सीट्स की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य में किसके सीट्स पर चुनाव होना है। कुल मिलाकर 59 सीट्स है 8 राज्यों पर जो रविवार को जिनमें चुनाव होना है। उनमें से जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं, पंजाब की लगभग सारी लोकसभा सीट्स पर चुनाव होना है 19 तारीख को, और उसके साथ ही 80 में से 13 लोकसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश, उसमें चुनाव होना है। सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं वो बनारस की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। लोग जानते हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि वो वहां से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन एक मार्जिन की बात हो रही है कि किस मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। कैसे देखते हैं आप बनारस का चुनाव?
हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसे प्रधानमंत्री जीत जाते हैं। इंदिरा गांधी को छोड़ के 77 का चुनाव था। सवाल यह आता है जो विपक्ष से जो लड़ रहे हैं उनको कितना वोट मिलता है और किस तरीके स्ट्रेटेजी करते हैं, उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा। बस मैं ये भी कहूंगा, बनारस का जो फल होगा बाकी उत्तर प्रदेश के फल के तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी अलग ही माना जाता है।
बनारस के साथ साथ गोरखपुर में भी चुनाव होना है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्षेत्र रहा है। इस बार बीजेपी ने वहां से रवि किशन को टिकट दिया है। आपको लगता है कि रवि किशन के आने से गोरखपुर में बीजेपी के चांसेस थोड़े सुधरेंगे?
देखिए, बोलना बहुत मुश्किल है, क्यों जब आदित्यनाथ जी का जब वैकेंसी हुआ था जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी हार गया था, और ये गठबंधन का शुरुआत भी एक तरह का अखिलेश मायावती का तभी शुरू हुआ था और वो लोग जीते थे, तो इसलिए इस बार कहना मुश्किल है। मैं कहूंगा कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा बोलना बहुत मुश्किल काम है।
पड़ोस के राज्य बिहार में भी मई 19 को 8 सीट पर चुनाव होने हैं, जिनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, कराकट और जहानाबाद है। सबसे ज्यादा रोचक जो मुकाबला हो सकता है उसकी बात है पटना साहिब की। पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के बागी नेता अब कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद है। कितना रोचक होगा यहाँ का मुकाबला?
आपको याद होगा जब कम्युनिस्ट शासन था तब लोग ये बोलते थे जो आखिरी पूरा बैटल होगा वो कम्युनिस्ट और एक्स कम्युनिस्ट में होगा, तो ये भी रोचक है कि एक जगह लड़ाई जो हो रही है, जो बीजेपी से निकल के लड़ रहे हैं और एक वो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता है, तो इधर भी देखिए जो बोलना बहुत मुश्किल है कौन जीतेगा, क्योंकि बिहार का जो पूरा चुनाव का प्रक्रिया ही है वो बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करता है, और इसीलिए हम डेमोक्रेसी को बोलते हैं ना फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सारे को लेके लोग आलोचना भी करते हैं और इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक परंपरा है वो भी काफी सुदृढ़ होता है।
कांग्रेस ने अपना अलायंस किया है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। ऐसा कंसर्न है कि कांग्रेस जो 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है बिहार में, उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का एक जो लेवल है उसको कहीं पर झटका पड़ा है। आपको लगता है कि कांग्रेस को वहां पे अकेले चुनाव लड़ना था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती?
अकेला तो कोई नहीं लड़ रहा है, और आप नेशनल पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने अपना 6 जीता हुआ सीट छोड़ा, तो 19-19 है उनके साथ। इधर कांग्रेस का जो संगठन है बिहार में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट किया है उसमें मुझे नहीं लगता और कोई रास्ता इनके लिए खुला था। आरजेडी और आपका कांग्रेस का जो संपर्क है बहुत पुराना है, और ये लोग तो दोनों हाथ मिला ही लेंगे, ये करीबन तय है। लालू जेल से भी उतना ही पॉपुलर रहे जब वह बाहर थे, और उनका जो लड़का भी है वो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया इंडियन राजनीति में, इसके बाद कौन लीडर आएगा, तो यंग लीडर है, ठीक ठाक कर रहा है। नीतीश जी का छवि अच्छा है, पर जब लालू बाहर थे उनको बहुत अच्छा संपर्क लोग देखते थे, अब लालू का एग्जिट हो गया जो पॉलिटिकल सीन से, और उन्होंने जो दोबारा 2 पार्टी छोड़कर सरकार बनाई इसको भी लोग बहुत अच्छी तरह नहीं देखते, तो बिहार का चुनाव बहुत ही कांटे का टक्कर है, और देखिए कौन जीतता है उससे काफी फर्क नेशनल पॉलिटिक्स में आएगा।
लालू की अनुपस्थिति से कुछ इस इलेक्शन में फर्क पड़ेगा?
मुझे नहीं लगता, जेल में रहना नहीं रहना ज्यादा महत्व नहीं रखता इस देश में, लोगों को सब पता है क्या हो रहा है। लालू की जो सपोर्ट बेस है वो मुझे लगता है वो ऐसे ही टिका हुआ है, और मेरे ख्याल वो जेल में रहते और बाहर रहते एक ही चीज होता।
बिहार से हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में 9 लोकसभा सीट पे चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों की निगाहें बंगाल के चुनाव पर हैं। बीजेपी को देखिए, पूरी जोर शोर से वहां पे तैयारी कर रही है। क्या लगता है किनको फेवर करेगी बंगाल की जनता इस बार?
देखिए, आपने 2 पार्टी का नाम लिया, वो लगता है वो अनुचित है। 4 प्लेयर्स हैं, कांग्रेस भी है और कांग्रेस से 3 सांसद भी थे, आपको याद होगा। बीजेपी से 2 ही था, सीपीएम से 2 थे और तृणमूल के पास भी बहुत सारे थे। तो इस अनुसार 4 पार्टी के टक्कर है और बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है। हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें जब वोट चारों में बटेगा, कांग्रेस का अभी भी 5-7% सपोर्ट है और सीपीएम और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है उसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा अंतर आएगा। सीपीएम का जो कैडर है, सीपीएम का जो वोट है पूरा राज्य में फैला हुआ है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कुछ कुछ जगह ये आगे बढ़ जाए।
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का एक समझौता अंडरस्टैंडिंग इस चुनाव में नहीं हो पाया, क्या समझौता न होने का फायदा बीजेपी को मिलेगा वेस्ट बंगाल के इस चुनाव में?
नहीं, मुझे नहीं ज्यादा लगता है। कांग्रेस का सपोर्ट बेस तो कहीं कहीं जगह में है, मालदा में है, बहरमपुर में है, पूरा स्टेट में फैलाया हुआ नहीं है, वो सीपीएम का है। इसलिए तृणमूल के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको ये चुनौती।
एक हम पूरे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करें, सारे पॉलिटिकल लीडर्स अब पूरा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में कुछ बयान को नजर डालें तो मायावती ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कुछ पर्सनल टिप्पणी दी थी। मणिशंकर अय्यर के भी कुछ बयान सामने आए, आप इन बयानों को कैसे देखते हैं?
देखिए, दोनों तरफ से हो रहा है। प्रधानमंत्री भी सोचते हैं कि किसने वोट दिया नहीं दिया, वो राहुल गांधी के ऊपर भी बोलते हैं, राजीव गांधी के ऊपर भी बोलते हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें ना हो, जैसे मायावती ने भी कहा, दोनों जो रूलिंग पार्टी है विपक्ष है दोनों को सोच समझ के बोलना चाहिए, इश्यूज के ऊपर कंसेंट्रेट करना चाहिए और रोजी के ऊपर करना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर करना चाहिए, इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं एक साथ में एक आपको कहूंगा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव के समय लागू होता है वो ज्यादातर लोगों ने मानी है, कम लोगों ने उसके बाहर जाके करने की कोशिश किया है। उसके सुधार तो हम जरूर चाहते हैं, आगे बढ़े, डिबेट अच्छा हो, तर्क वितर्क हो, पर अभी भी जो चल रहा है उसमें चुनाव ठीक ही चल रहा है।
लेकिन एक बोलचाल का या एलिगेशन काउंटर एलिगेशन का सिलसिला देखेंगे तो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, सब लोग पर्सनल लेवल पे जाके कमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ठीक है?
एकदम ठीक नहीं है। इससे हमें हटके इश्यूज के ऊपर बात करना पड़ेगा। और देखिए, वोटर्स बड़े मैच्योर्ड हो गए हिंदुस्तान में। ये पर्सनल टिप्पणी से चुनाव हारा भी नहीं जाता, जीता भी नहीं जाता। लोग सोच समझ के वोट देते हैं, गरीब लोग ज्यादा वोट देते हैं और उनके लिए वोट का मान्यता अमीरों से ज्यादा होता है, इसलिए सारा सोच के वोट देते हैं। ये चुनाव में जो सब टिप्पणियां और गर्मियां होती हैं, ये हमारी जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसका एक अंग बन गया है। पर हम आशा करते हैं आगामी जितने भी चुनाव होंगे इस तरह का चीजें कम होती जाएगी।
आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने वहां पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अगर हिम्मत है तो वो एक अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट का नाम सामने लाए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पीएम का नाम, अभी तक उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम आगे नहीं किया है, या तो कैंडिडेट की कमी है या एक सोची समझी राजनीति स्ट्रेटजी है?
देखिए, इसमें दो चीज है। कोई भी राजनीतिक दल जहां स्ट्रांग होता है उसको बताता है, जैसे बीजेपी के स्ट्रांग है कि इनके प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तय है, पर कांग्रेस का अभी तक नहीं है।
लोकसभा के आखिरी चरण में चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्म सेक्टर डिस्ट्रेस, पुअर इम्प्लीमेंटर ऑफ जीएसटी या कुछ और?
ये सारे विषय रहेगी, बाकी विषय भी है। देखिए, हिंदुस्तान तो पूरा यूनिट इन डाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं, हर जगह लोकल इश्यूज भी है, नेशनल इश्यूज भी है, नेशनल सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सारे इश्यूज हैं। तो ये सारे इश्यूज लेके ही डेमोक्रेसी चलता है और हिंदुस्तान इसी तरह आगे बढ़ रहा है।
उम्मीद करते हैं कि सभी लोग 19 तारीख के आखिरी चरण में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। धन्यवाद।
सामिकी में अभी आप सुन रहे थे 7वें चरण के चुनाव के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुब्रतो मुखर्जी और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।